चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना। एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है आए। जी हाँ, आए कुरान सीखे हमारे प्रोग्राम का नाम है। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होंगे। हम कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखेंगे और कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हासिल करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, आखिर तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आए हम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। सल्लू अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान।
चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।
तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सेगमेंट में सूरह कदर की 3 आयात सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरह कदर की 4थी आयत सीखेंगे। तो बच्चों तैयार हैं? तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر। प्यारे बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो इस आयत में अप्लाई करना ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं, ठीक है?
जी।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप हर्फ लिखा हुआ देख रहे हैं ये है ज़ा। क्या है?
ज़ा।
और यहाँ पर जो आप हर्फ लिखा हुआ देख रहे हैं ये है ज़ाल। क्या है?
ज़ाल।
इन दोनों में एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, और जब हम ज़ाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़
नहीं
आएगी। यानी इसे पढ़ेंगे ज़ा
ज़ा,
और इसे पढ़ेंगे ज़ाल। समझ में आया बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ये भी देख लें कि यहाँ पर खड़ा ज़बर है और इसके बाद हमज़ा आ रहा है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हरूफ मद्दा के बाद जब भी हमज़ा उसी कलिमे में हो तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होता है। और चूंकि खड़ी हरकत यानी खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश भी हरूफ मद्दा ही की तरह हैं, तो उनके बाद भी अगर हमज़ा उसी कलिमे में हो तो वहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होता है। और यहाँ पर यही है कि खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा इसी कलिमे में है तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल, ठीक है? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है बा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बा हुरूफ़े कलकला में से है। किन में से है? हुरूफ़े कलकला नहीं, हुरूफ़े कलकला, हुरूफ़े कलकला में से है। और हुरूफ़े कलकला पर जब भी तशदीद आ जाए तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर भी बा पर तशदीद है तो इसे भी जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि नून साकिन है और इसके बाद काफ आ रहा है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नून साकिन के बाद हरूफ़ इकफा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इकफा होता है। और प्यारे बच्चों, इकफा में हम गुन्ना करते हैं यानी नेज़लाइजेशन के साथ पढ़ते हैं, या यूँ कह लें कि उसे नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हरूफ़ इकफा में से काफ आ रहा है तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे यानी नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर रा के नीचे दो जेर हैं और आखिर में जो गोल दायरे का निशान आप देख रहे हैं ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज़ का निशान है? आयत के मुकम्मल होने का। और जहाँ भी ये निशान हो वहाँ पर हम वक्फ करते हैं, यानी आवाज़ और सांस दोनों को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों वक्फ का एक रूल है, एक कायदा है कि जिस कलीमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर हर्फ के नीचे अगर दो जेर हों तो उसे हम साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो यहाँ पर भी हम रा को साकिन कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे इस आयत के कवायद मुकम्मल हुए। अब आइए हम इस आयत को मिलकर दोहराते हैं, ठीक है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। मिन कुल्ली अम्र। अब आप में से कोई मुझे ये आयत सुना सकता है? जी आप सुनाएं।
तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र।
माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं, आप वहाँ जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है
ये है मदरसतुल मदीना।
चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना।
मेरा नाम सैयद अहमद अली अत्तारी है, मैं मदरसतुल मदीना फैज़ान बुखारी 11D1 में नाज़िम हूँ। हमारे मदरसे में कम व बेश 201 तलबा ज़ेर तालीम है और नीचे हमारे लिल बनीन जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इसकी ऊपर की इमारत में लिल बनात बच्चियों का मदरसा है।
कुरान पाक पढ़ाना सिखाया जाता है, अम्मी अबू से बात करना सिखाया जाता है, बड़ों से बात करना सिखाया जाता है, मोहल्ले वालों से बात करना सिखाया जाता है और बहन भाइयों से बात करना सिखाया जाता है।
मेरे कासा बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर मुफ्ती तालीम दी जाती है।
इस मदरसे में भी बच्चियाँ ज़ेर तालीम है जो कुरान करीम फुरक़ान हमीद की तालीम हासिल कर रही हैं। हमारे मदरसे में लिल बनीन जहाँ बच्चे पढ़ते हैं कम व बेश 10 दर्जात हैं और यहाँ पर शोबा नाजरा मदनी कायदा और हिफ्ज़ के तलबा कराम कुरान करीम फुरक़ान हमीद की तालीम हासिल कर रहे हैं।
मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, मेरी 4 बजे छुट्टी होती है। कैसा बच्चे हैं, तालीम अच्छी है, मेरा 1-1.5 साल हुआ है, मेरे 12 पार हिफ्ज़ हो गए और माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं।
दौरानिए के अंदर सुबह 8 से 4 बजे के दरमियान में बच्चों की जहनी सलाहियतों को उभारा जाता है, इनकी तरबियत की जाती है और सुन्नतें और आदाब भी सिखाए जाते हैं। हमारे पास स्कूल यानी दुनियावी तालीम का भी एक सिलसिला होता है, इसमें भी तलबा दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे यहाँ KG और क्लास 1 पर अभी दाखिले भी जारी हैं। और इस मदरसे में जो बच्चे तलबा पढ़ रहे हैं इनकी तालीम और तरबियत के लिए हर कारी साहब अपने अपने तौर पर दर्जे में तरबियत जारी रखते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को मदारिसुल मदीना में दाखिला करवा कर अपनी दीन और दुनियावी उखरवी और दुनियावी दोनों मामलात अच्छे करें। अल्लाह ताला हमें इल्मे दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
माशाअल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी हमारे बच्चों की तरबियत कर रही है और उनके मोरलाइजिंग में अपना किरदार अदा कर रही है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों का एडमिशन दावत इस्लामी के मदारिस में कराएं ताकि हमारे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करके, अच्छी तरबियत हासिल करके हमारी आँखों की ठंडक बने। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है
चलो सीखें कुरान,
चलो सीखें कुरान।
प्यारे बच्चों आज मैं आपको कुरान पाक का एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसका ताल्लुक यमन की एक कौम से है और उस कौम का नाम था कौमे सबा। क्या नाम था?
कौमे सबा।
कौमे सबा। प्यारे बच्चों ये कौम जहाँ रहती थी वहाँ की ज़मीन इतनी पाकीज़ा थी, वहाँ का मौसम इतना साफ सुथरा था कि वहाँ पर कभी भी मक्खी मच्छर सांप बिच्छू नहीं होते थे और पूरा साल दरमियाना मौसम रहता था, ना ज़्यादा सर्दी होती थी ना ज़्यादा गर्मी होती थी। اور یہاں کے باغات میں اتنے پھل ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص خالی ٹوکرا اپنے سر پر لے کر گزرتا تو اس کا ٹوکرا طرح طرح کے پھلوں سے بھر جاتا تھا اور وہ بھی بغیر ہاتھ لگائے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بڑے ہی امن اور سکون سے گزر بسر کر رہی تھی، رہ رہی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ان پر اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنے انعام ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔
لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وہ نافرمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے وقفے وقفے سے 13 انبیاء بھیجے۔ کتنے نبی بھیجے؟ 13 انبیاء بھیجے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے پاس آئے تھے تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی فرما برداری کرتے، ان کی اطاعت کرتے، لیکن معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کو جھٹلا دیا۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد۔ کیا نام تھا؟
حماد
اس کا نام تھا۔ وہ بہت ہی تکبر کرنے والا اور نافرمان شخص تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر تھوک دیا اور کفر کا اعلان کر دیا، معاذ اللہ، اور لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دیتا تھا۔ اور وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے کہا کرتا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتیں ہم سے واپس لے لے، ہم سے چھین لے۔ تو جب حماد اور اس کی قوم کی نافرمانیاں اور گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب بھیجا؟ سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات، مال اور مکانات سب ختم ہو گئے، پوری بستی ریت میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر ان کے عمدہ اور مزیدار پھلوں کے باغات جنگلی بیریوں کے کانٹے دار اور خوفناک جنگلات میں تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کبھی بھی
نہیں کرنی چاہیے۔
اور قوم سبا پر جو عذاب اترا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی اور گستاخیوں کی وجہ سے اترا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی نافرمانی سے، ان کی بے ادبیوں سے بچیں اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے
چلو سیکھیں قرآن۔
تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ دو ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو۔ ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن پیارے بچوں اس سے پہلے اس کمپٹیشن کے رولز سن لیں۔ دونوں ٹیم سے پانچ پانچ سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟
پانچ
پانچ سوال ہوں گے۔ اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں اور آپ نے مجھے اس کا درست جواب دے دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپشن لینے کے بعد آپ مجھے درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اور اگر آپ پھر بھی جواب نہیں دے پائے تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے
جی؟
تو میرا پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ آپشن دے دوں؟ 5 سورتیں، 4 سورتیں یا پھر 3 سورتیں؟
4 سورتیں۔
4 سورتیں۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ قرآن پاک کی 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس سوال میں ٹیم گرین کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں کہ کس سورت میں عورتوں سے متعلق بہت زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ آپشن دو۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء یا پھر سورہ نمل؟
سورت النساء۔
سورت النساء، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ तो टीम ब्लू को मिलते हैं इस सवाल में 5 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताएं कि कुरान पाक की कितनी सूरतों के नाम हैवानात के नामों पर हैं?
4।
सोच लें।
कंफर्म।
आपका जवाब गलत है। कुरान पाक की 5 सूरतों के नाम हैवानात के नामों पर हैं। तो इस सवाल में भी टीम ग्रीन को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप बताएं कि उम्मुल किताब किस सूरत का नाम है?
ऑप्शन।
ऑप्शन दूं? सूरह बकरा, सूरह इखलास या फिर सूरह फातिहा? सूरह बकरा, सूरह इखलास या फिर सूरह फातिहा?
सूरतुल बकरा।
सूरतुल बकरा, आपका जवाब गलत है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। इस सवाल में टीम ब्लू को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं, बहुत वीक जा रहा है आपका कंपटीशन। जी अगला सवाल है टीम ग्रीन से। सूरह फातिहा में कितने कलिमे हैं?
ऑप्शन।
ऑप्शन 27 कलिमे, 20 कलिमे या फिर 25 कलिमे?
25 कलिमे।
25 कलिमे हैं, आपका जवाब गलत है। सूरह फातिहा में 27 कलिमे हैं। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप बताएं कि सूरह बकरा में कितनी आयात हैं? सूरह बकरा में कितनी आयात हैं?
ऑप्शन।
ऑप्शन 200 आयात हैं, 250 आयात हैं या फिर 286 आयात हैं?
250।
आपका जवाब गलत है। तो इस सवाल में भी टीम ब्लू को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताएं कि सूरह कहफ कहाँ नाजिल हुई?
ऑप्शन।
मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में या मस्जिद अक्सा में?
मक्का मुकर्रमा में।
मक्का मुकर्रमा में सूरह कहफ नाजिल हुई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में टीम ग्रीन को मिलेंगे 5 पॉइंट्स। दोनों टीम्स 5-5 पॉइंट्स के साथ बराबर हैं। अब अगला सवाल है टीम ब्लू से। टीम ब्लू, आप बताएं कि सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है? सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है?
सूरतुस्सयकूल।
आपका जवाब गलत है। सयकूल से दूसरा पारा शुरू होता है, दूसरी सूरत शुरू नहीं होती। तो इस सवाल में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। दोनों टीम्स बराबर हैं। अब अगला सवाल है और आखिरी सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताएं कि सूरह नूर किस पारे में है?
ऑप्शन।
ऑप्शन दूं? 8वें पारे में है, 18वें पारे में है या 22वें पारे में है?
18वें पारे में।
18वें पारे में है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में टीम ग्रीन को मिले हैं 5 पॉइंट्स और टीम ग्रीन के टोटल हो चुके हैं 10 पॉइंट्स और आपके हैं 5 पॉइंट्स। अगर टीम ब्लू आप जीतना चाहते हैं तो आपको मजीद 10 नंबरों की जरूरत है। जी टीम ब्लू, आप बताएं कि सूरह यासीन में कितने रुकू हैं?
10।
10 रुकू हैं, आपका जवाब गलत है। सूरह यासीन में 5 रुकू हैं। तो इसी के साथ टीम ब्लू के हैं सिर्फ 5 पॉइंट्स और टीम ग्रीन के हैं 10 पॉइंट्स। तो इस हिसाब से टीम ग्रीन आज की हमारी विनर है। तो इंशाल्लाह दोनों टीम्स को इनामात भी मिलेंगे। तो दोनों टीम्स के इनामात आ चुके हैं, ये लें टीम ग्रीन। आमीन। ये लें टीम ब्लू। ये लें टीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सल्लू अलल हबीब।
चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, इक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है।